ॐ भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो स्वामी श्रद्धानंद हॉस्पिटल में आज आने से बड़ी खुशी है, आनंद है, और हम यहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। जन्माष्टमी का उत्सव ये हमारे लिए सबसे बड़े भाग्य की बात है, ये हमारे भाग्य का उदय करता है, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर आकर हम पर बड़ी कृपा करते हैं। उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उनके धाम में उनके परम शुद्ध भक्त उनकी परम भक्ति पूर्ण सेवा करते रहते हैं, और यहाँ पर कौन लोग हैं जो उनको छोड़ कर आए हुए हैं? नहीं चाहिए, आपका स्वामित्व नहीं चाहिए, अपना स्वामी बनेंगे। तो हम सब लोग उनमें से आते हैं, हाँ माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य है कि हम सब लोग वो है जो उनको छोड़ कर आए हैं। और चाहे तो कह सकते ठीक है जहाँ आपकी मर्जी आ रहा हूँ, मैं मेरी मर्जी वहां रहूंगा। लेकिन जैसे ही एक बालक अपने पुत्र एक बालक अपने पिता से झगड़ा करके घर छोड़ के चला जाता है, ऐश्वर्य आपको पता होगा ना, नहीं लेने का मेरे को आपसे, मैं बुड कॉलेज करूंगा, स्टेशन पे रहूंगा, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ऐसा कहने पर भी बालक घर पे छोड़ के चला जाता है, लेकिन पिताजी कैसे है किसी दोस्त को किसी पड़ोसी को किसी अंकल को भेजते रहते हैं, देखो जरा देख के आओ क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किधर सोता है। और वो लोग भी उनको कहता है कि मना लो उसको, लेके आओ वापस, नहीं मानता है तो क्या करते हैं? यस, कोई कल्पना आपको, अगर नेबर को भेजा, काका को भेजा, फ्रेंड को भेजा, फिर भी वो लड़का वापस लौट के नहीं आया, फिर पिताजी क्या करते हैं? हाँ खुद जाते हैं, बोलते बेटा बस हो गया, अभी बुक कॉलेज सब प्रॉपर्टी तेरी है, सब घर बंगला गाड़ी मेरे बाद तो तेरे नाम पे आने वाला है ना, इधर पॉलिश क्यों कर रहा है रास्ते पर बैठ के? तो अगर वो मान जाए तो लकी है, नहीं चाहिए मुझे आपका बंगला, यहीं पर ठीक हूँ, तो अभी और क्या करेगा, वो हाथ जोड़ के विनती कर सकता है, चलो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया होगा तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, दोबारा लौट के आओ, इधर सूखी रोटी खाते हो उधर पूरन पूरी खाओ, है ना, सब घर में रेडी है तुम्हारे लिए, मार हो रही है तुम्हारे लिए। वैसे ही भगवान अपने संतों को भेजते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं, अलग अलग लोगों को आकर याद करते हैं, चलो आ अब लौट चले, घर पे लौट चलो, अभी इधर कितना दिन तड़पोगे, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा प्रॉपर्टी का झगड़ा भाइयों का झगड़ा बीवी और पति पति पत्नी का झगड़ा पति और मतलब पिताजी और पुत्र का झगड़ा माँ बहन का झगड़ा, इससे कब भी आप तंग आओगे और कब आओगे मेरे पास? इसलिए भगवान कृष्ण आते स्वयं, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो सब सभी अवतारों के कलाओं के नाथ है, वो स्वामी है, वो स्वयं आते हैं, वो अपना ईगो रखते नहीं है, मैं इतना बड़ा भगवान हूं और मैं इसके लिए क्यों जाऊं जमीन पर, हम लोग सोचते हैं ऐसा, मैं कहा जाऊं जावाड़ी ले, मैं कहा जाऊं कलाई परत ना घसत। ऐसे भगवान नहीं सोचते, क्योंकि भगवान के अंदर ना अधिकार बहुत है। भगवान को वैसे ही देखा जाए तो हमारे लिए कैसा है, अहंकार करने के लिए कोई कारण लगता नहीं है। भिखारी भी बहुत अहंकारी होता है कि मैं दादर के ब्रिज पे भीख मांगता हूं, है ना, और अपने जमाई को कहता है कि आज से तू यहां भीख मांग ले, दहेज में मैं कहीं और ब्रिज देख लूंगा। मतलब वो जो जहां पर भीख मांगता है उसका भी गर्व है उसको, तो गर्व होने के लिए कोई कारण लगता है क्या? लेकिन भगवान के पास गर्व होने के लिए कितने कारण है बताओ। अरे सारी दुनिया उनके मुट्ठी में है, एक पत्ता भी उनके इच्छा से नहीं हिलता है, इतनी ताकत है उनको, तो कितना गर्व उनको होना चाहिए। अगर हमको भी अपने ब्रिज का गर्व है तो कितना गर्व उनको होना चाहिए। ऐसा होते हुए भी भगवान परम नम्र बनकर हमारे पास आते हैं, एक ही कारण है उसका, एक ही कारण, अपनी लीलाओं को यहां दिखाकर हम सब लोगों का मन वो आकर्षित करना चाहते हैं कि आ जाओ, अभी यहाँ की लीला बहुत हो गई, यहाँ की लीला में से कोई आनंद निकलने वाला नहीं है। मैं इतने धनी लोगों को जानता हूं जिनके घर में या तो लड़की लड़की, हम धनी लोगों के अच्छे कुल की लड़की ड्रग्स लेती है, आए दिन नए नए लड़कों के साथ सोती है, और एक धनी व्यक्ति है उसका लड़के का शादी हो गया, इतना बड़ा शादी हुआ था, वो शादी में गया था, उसमें 80 आइटम थे भोजन के लिए, कौन सा खाएंगे, एक घास खाएगा तो भी पेट भर जाएगा, और दुल्हा दुल्हन झूले में झूल रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, ऐसा इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था, एक साल में डिवोर्स हो गया, और आज तक वो लड़का पागल है, मतलब अभी तक वो कुछ काम का नहीं है, 120 किलो का हो गया है और कुछ नहीं कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, ना कुछ उसको सुख है, ना माता पिता का सुख है, हजारों हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन लड़का निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मैंने अभी कितने उदाहरण दूं आपको, कई लोगों को जान दे सकता हूं। और एक बड़ा परिवार है, उसके अंदर एक भाई इतना बड़ा शराबी है, इतना बड़ा शराबी है कि सब लोगों की नाक काटता है, जहां जाकर जाता है वहां पर टाइट होके लौट के आता है, बिल को बंगले में भेज देते हैं और इसको पकड़ पकड़ के ले गए थे, रात भर उसका तमाशा चलते रहता है घर पे, और कुछ सुख नहीं है। इसका कारण, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास धन है तो भी आपके पास सुख नहीं है, आपके पास धन नहीं है फिर भी आपके पास सुख नहीं है, आप दिखने में सुंदर हो फिर भी सुख नहीं है, दिखने में अच्छे नहीं हो फिर भी सुख नहीं है, आपके पास सब साधन है खाने पीने के तो भी आपको सुख नहीं है, और आपके पास खाने पास कुछ नहीं है फिर भी आप दुखी। इसका मतलब जो आरोग्य संपन्न है वो रोगी है, वो दोनों दुखी है, जो धन संपन्न है, धन गरीब है, वो भी दुखी है। इसका मतलब सुख इसमें किसी में भी नहीं है, और वो सुख हमको देने के लिए भगवान आते हैं कि यहां पर तुम जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां पर सुख है ही नहीं। एक अच्छा जोक बता देना कि एक महतारी की सुई सांडली, इतना मोटा हॉल है, ते सुई सांडली तो लाइट तिकड़े है फक्त, म्हणून ती म्हातारी सुई तिकडे शोधते, कळलं जोक तुम्हाला काय, तिथे म्हातारीला तिथे काय शोधते, तिथे लाईट आहे ना बघायला म्हणून तिथे शोधते, पण सुई पडली कुठे, तिकडे। वैसे हमारी अवस्था है, हम लोग सुख वहां ढूंढ रहे हैं जहां पर कोई गुंजाइश नहीं है उसकी। करेले के झाड़ पे अगर आम ढूंढ रहे हो आप, वो बोलेगा अरे सामने नहीं पीछे से होगा, तो पीछे जाके ढूंढेंगे, अरे पीछे भी नहीं सामने भी नहीं, तो राइट में होगा, फिर राइट में भी नहीं मिलेगा, लेफ्ट में भी नहीं मिलेगा, फिर आप 10 दिशा में ढूंढोगे ना करेले के, तो भी आपको आम नहीं मिलेगा, क्योंकि करेले के झाड़ पे आम नहीं लगता भाई बहनों। वो आम के झाड़ पे ढूंढोगे तो ही मिलेगा, और वही मई महीने में गए जाओगे तो भी मिलेगा, नहीं तो या तो फूल मिलेगा जनवरी में या तो कच्ची गहरी मिलेगी मार्च में, लेकिन मई महीने में आपको पका हुआ पीला आम मीठा मीठा मिलेगा, उसका भी समय होता है। उसी तरह से इस भौतिक दुनिया में आप जगह जगह दर दर भटकोगे, दर दर सर पटकोगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आनंद का बीज भगवान ने रोया बोया ही नहीं है। यहां पर आनंद का बीज बोया है वहीं पर आनंद का लाभ होता है। तो ये भगवान की भावना है हमारे लिए कि सच्चा सुख जो आपको जरूरी है वो उनके धाम में है और वो देने के लिए यहाँ पर आते हैं याद दिलाने के लिए। मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, पिक्चर का गाना, अब लौट चले, मराठी में था ना, अशी पाखरे ये थी। क्या उस गाने का अर्थ क्या है कि सब पंछी आते हैं यहाँ पर, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं, और भगवान उनको सबको बुला रहे हैं, चलो अपने घर पे लौट के चलो, कितना दिन तक हो गया यहाँ पर। फिर भी हम जैसे लोगों को आशा रहती है, अब तक नहीं मिला, आगे मिल सकता है। अब तक प्रयास किया लेकिन कुछ प्रयास बाकी रह गया, इसलिए वो करेंगे ना तो मिलेगा आनंद अपने। सब लोग मन में चलते रहते हैं। आप ना दिल पर हाथ थाम कर पूछ लो कि आपको सच्चा आनंद प्राप्त हो रहा है क्या दुनिया में। कुछ लोगों ने 30 साल जिंदगी बिताई, 40 साल बिताई, कुछ लोगों ने 50 साल बिताई होगी, कुछ लोग 20 साल के जवान होंगे, कुछ लोग के 50 साल हो गए होंगे। दिल पे हाथ करके पूछो कि जिसकी आपको खोज थी वो मिला क्या आपको? इतना मेहनत करने पर, पढ़ाई करने पर, नौकरी करने पर, कमाने पर, शादी करने पर, बच्चे पैदा करने पर मिला क्या? नहीं, वो कैसा है ना, लगता है मिला है लेकिन मिला नहीं अब तक। लगता है लेकिन, अरे अभी ना वो एक बार बच्चा का शादी हो गया ना तो मुझे रियल आनंद मिलेगा, एक बार मेरी शादी हो गई ना फिर सबसे आनंद ही आने, एक बार मेरा MBBS पूरा हो गया ना, प्रैक्टिस शुरू किया ना, फिर आनंद ही आने। MBBS भी हो गया, MD भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, उनका भी MBBS हो गया, लेकिन वो खुशी नाम की वस्तु जो है ना पता नहीं किधर किधर गुम हो गई है, मिलती नहीं है वो, बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि सारी खुशी यहाँ पर नहीं है जो आपको चाहिए, वो खुशी भगवान के चरणों में। अगर कोई माँ जत्रा में अपने बेटे को लेके जाती है, बच्चे, हम भी जाते थे बचपन में, माँ का एक ही कहना था, मेरी उंगली मत छोड़ना, क्योंकि मेले में कैसा होता ना, सब जगह भूल भुलैया, यहाँ पर बॉल जा रहा है, यहाँ पर मेरी गो राउंड है, यहाँ पर चमचमाता हुआ खाजा मिल रहा है, चांदोलकर यानी खाजा निशंस वगैरह वगैरह, ऐसे भरपूर क्या क्या गोष्ठी हो सकती थी। तो ऐसा होता है कि यहाँ जाऊँ कि उधर जाऊँ, कि खाजा खाऊँ कि गुलाब जामुन खाऊँ कि बॉल ले लूँ, पता है ना बॉल मालूम ना, एक्शन से मालूम पड़ता है ना, पानी से भरा हुआ बॉल रबर से, पैसा लेने का हाथ पे लेते, पैसा लेने का हाथ पे, ये सब कुछ वहाँ रहता है, कुछ जगह बटाटे वटे मिल रहे हैं, तो कहीं भी मन भटक सकता है। और अगर आपने माँ के हाथ की उंगली छोड़ दी तो आप जत्रा में घूम हो सकते हैं। फिर आपके ऊपर एक हिंदी पिक्चर निकलेगी कि प्रभा देवी के जत्रा में ये गई थी, इसका बेटा खो गया, फिर वो बूट पॉलिश वाला बन गया, फिर आगे जाकर माँ का एक्सीडेंट हो गया, फिर बेटा खून देने आया तो पता चला ये मेरा ही बेटा है, है ना। ये फिल्म की बहुत पुरानी, अभी नहीं, बहुत पुरानी फिल्मों की फिक्स कहानी थी। जत्रा में माँ लेके जाते हैं, वो भी निरूपा रॉय, सब हर पिक्चर में वही, उसके हाथ से बच्चे खोते। तो कहने का तात्पर्य क्या है, माँ कहती है मेरा उंगली नहीं छोड़ना, आपको लगेगा माँ कितनी अहंकारी है, देखो कितनी इगोइस्टिक है, उसे मेरे उंगली पकड़ने में तेरा हित है, लेकिन सत्य क्या है, वही सत्य है, तो माँ के अहंकार का कोई कारण नहीं उसमें, माँ सत्य बोल रही है, तेरी सुरक्षा मेरी उंगली पकड़ने में है, किधर भी देख मेरे के भला उंगली छोड़ने का नहीं, बस पकड़ के रख, सब जगह देख लेकिन मेरा उंगली छोड़ मत। तो जब भगवान कहते हैं कि तुम्हारी खुशी मेरे पास है, हमने कितने अहंकारी भगवान, हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कितनी कितनी गीता में अपना बखान कर रहे हैं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, हाँ भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कितना अपना डंका पिट रहे हैं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। कुछ लोग मुझे गीता पढ़ने को बताते हैं कि तुम्हारे कृष्ण भगवान ना वो ज्यादा इगोइस्टिक, कितनी बार गीता में बोलते हैं मैं हूँ मुझे ही शरण में आ जा, मैं ही तेरा भगवान हूँ, तू मेरा ही अंश है, मैं ही तेरा सर्वस्व हूँ, मेरे शरण में आने से ही तेरा कल्याण है, कितनी बार बोलते हैं। हम लोग इतना बच्चों को नहीं बोलते हैं, इतना भगवान को बोल रहे हैं, लेकिन बखान करना और सत्य में अंतर होता है। कुछ बातें सत्य होती है, उसको आप गर्व के रूप में सुनते हो कि कितना गर्विष्ठ है, लेकिन सत्य है वो। अगर मैं कहूँगा कि मैं डॉक्टर हूँ, आप बोले कितना गर्विष्ठ आदमी, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। अगर मैं कहूंगा मैं डॉक्टर हूं तो उसमें गर्व की बात क्या है, वो सत्य है। इसलिए हम लोगों, मैं सुबह आज विचार कर रहा था इस बात पर कि इतने बड़े अहंकार का कारण होने पर भी, तो जायज है ना, भगवान कितने बड़े उनको अहंकार हो सकता है, लेकिन वो भगवान भी इतने नम्र बनकर हमारे पास में आते हैं। जैसे एक पिताजी घर छोड़ के जाने वाले बूट पॉलिश करने वाले बच्चे के पास आकर बोल रहे बेटा घर चल, अहंकार किसको होना चाहिए? पिताजी को होना चाहिए। लेकिन वो प्रेम के वजह से, केवल एक प्रेम ऐसी वस्तु है ना, वो अहंकारी व्यक्ति को भी नम्र बनाकर भेजती है किसी के पास, क्योंकि प्रेम है उसका। तो जैसे वो पिता को बूट पॉलिश करने वाले बच्चे पर प्रेम है कि उसका हित में नहीं है ये, उसका हित मेरे घर पर रहने में, वैसे ही भगवान को हम पर प्रेम है, इसलिए वो बार बार आते। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों को लगता होगा कि आप श्रद्धानंद में काम कर रहे हो, हाँ हॉस्पिटल में जन्माष्टमी भी करते हैं, कभी गोवर्धन पूजा भी करते हैं, कभी होली भी करते हैं, गोवर्धन पूर्णिमा भी करते हैं, अच्छा है अस्पताल, अच्छा है। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो काम के जगह पे अभी देखो आपने कितना देर से यहाँ पर डेकोरेशन किया, उसको 2 घंटे लगे होंगे, 2 घंटा प्रोग्राम में बैठेंगे, 1 घंटा प्रसाद लेने में लगेंगे, हम लोग गिनती करेंगे 5 घंटे के लिए इतने सारे स्टाफ को ऑन ड्यूटी रखा इधर खाली अभिषेक करने के लिए और प्रसाद खाने के लिए, कितना लॉस हो गया सैलरी का और काम का। इसलिए भक्ति विधान को काफ़ी हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज समझते हैं, ये लोग कितने लोगों का समय बर्बाद कर रही है, काम का समय पगार देके बर्बाद कर, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन हमको पता है कि काम की जगह पे अगर भगवान का कनेक्शन आपका हो गया ना, तो आपकी जिंदगी सुधर सकती है, आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए कितनी भी टीका होने पर कितना भी लोग हमको मूर्ख समझते हैं कि वर्किंग आवर में इतना टाइम पास करते हैं लोग, शाम को करो ना ऑन ऑफ ड्यूटी में, पता है देखो कितना लोगों की इच्छा आने की, ये ऑन ड्यूटी करते हैं, ऑन ड्यूटी में प्रार्थना करते हैं 15 मिनट के लिए, दिन में 4 बार करते हैं, 4 उत्सव मनाते हैं, 5 उत्सव, ये हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। आपके होने के पहले मेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि मुझे भी ऑन ड्यूटी भगवान के विषय में बोलने का सुनने का मौका मिलता है। इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जब प्राप्त हुई कृपा हम लोग गंभीरता से लेते नहीं है, तो फिर वो समय के साथ अपने से छीनी जाती है। आपको दिया हुआ जो मूल्यवान वस्तु आपने ठीक से रखा नहीं, तो माँ क्या करती है, इसको मत दो, क्योंकि उसको पता नहीं रखना कैसे, दिया था मैंने, गंवा दिया उसने उसको। उसी तरह से भगवान भी अगर अपनी मूल्यवान वस्तु आपको देते हैं और आप उसको गंभीरता से लेते नहीं है, केवल नौकरी के रूप में देखते हैं, कृपा के रूप में देखते नहीं है, तो वो कृपा भी जाएगी निकल के आपसे। आप क्या करेंगे, आपके बच्चे को आपने कुछ कीमती वस्तु दिया और स्कूल में ही छोड़ के आए, तो क्या करेंगे, अगले दिन वापस देंगे उसको, नहीं देंगे। हम लोग अगर ऐसा करते हैं मूल्यवान वस्तु के बारे में, तो भगवान से आप क्या उम्मीद रखते हैं, बताओ। इसलिए ये हमारा परम भाग्य है। और मैं बार बार ये दोहराता हूं कि काम के जगह पर भगवान का संबंध होना, भगवान के विषय में कुछ विचार करने के लिए, सुनने के लिए मिलना, ये परम भाग्य की बात है। और ये आपने पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों का परिणाम है। एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्ति विधान अस्पताल के सभी जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर सवेरे की प्रार्थना होती है, और कई जगह पर शिक्षाष्टकम, कई जगह पर भगवद्गीता, कई जगह भागवत की एक श्लोक की कथा हो रही है। आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? भगवद्गीता का चल रहा है, और वो समाप्त होगा तो भागवतम शुरू करेंगे। भगवद्गीता का श्लोक, भागवतम का श्लोक सुनने को मिलने के लिए पिछले कई जन्मों तक पुण्य कार्य करने पड़ते हैं, ये आपको पता नहीं। तो अगर मैं भक्ति विधान में खड़े होकर 10 बजे श्रीमद् भागवत पर अगर एक श्लोक पर निरूपण कर रहा हूँ, तो 50 लाख स्टाफ खड़े हैं, लेकिन 200 पेशेंट ऐसे वेटिंग में बैठे हुए हैं, इनको अभी नंबर लगा नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, वो सुनते हैं उसको। तो उन्होंने भी अपने जीवन में पिछले जन्मों में पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए यहाँ पर 10 बजे पेशेंट बनकर वो आए हैं, बाय चांस नहीं आए, योगायोग नहीं है वो। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का भाग्य योगायोग नहीं है, ये हमारे पिछले पुण्यों का फल है। लेकिन पिछले आपने बहुत पुण्य किए हैं, और आज फल जब आता है तो आप बाजू में रखते हो, तो क्या कहोगे इसका? इसको दुर्भाग्य कहते हैं कि आपने मेहनत तो किया है, उसका फल भी आपको आज मिल रहा है, लेकिन वो फल के प्रति आपको अज्ञान की वजह से आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, या दुर्लक्ष्य कर रहे हो, या उसका लाभ नहीं ले रहे हो, वो लेना बहुत जरूरी है। अगर मैंने 7 साल पढ़ाई किया MBBS का, डॉक्टर बन गया, डिग्री भी लिया, रजिस्ट्रेशन भी मेरा हो गया है और मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो क्या हो गया? 7 साल भी वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, पिताजी का मेहनत भी वेस्ट हो गया, सब वेस्ट हो गया। इसी तरह से भक्ति विधान में आप काम करें, मैं आपको विनती करता हूँ, भगवान का नाम आपके जीवन में लीजिए, आप स्वीकार कीजिए उसको। खाली ड्यूटी में हरे कृष्णा ये भी अच्छा है, लेकिन माला करने का नियम भी लेना अपने जीवन में, क्योंकि ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। कितने लोग अभी हॉस्पिटल में मरते हुए मैं उनको मिलता हूँ जाके एंड में, तो उनके मन में यही पश्चाताप रहता है कि प्रभु जी हमने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ करने को बताया था हमको, हमने लेकिन हमेशा बोला कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, और अभी लास्ट में लगता है कि वो करते तो कितना अच्छा था। अभी डर लग रहा है कि मरने के बाद हम नरक में जाएंगे, किस स्वर्ग में जाएंगे, कि भगवान हमारे पे गुस्सा है। आप जरा मिलो, फिर मालूम पड़ेगा उनके मन में क्या विचार रहते हैं उस समय। पता नहीं हमको कितना बताया गया, हमने नहीं किया तो शायद भगवान हम पे गुस्सा होंगे, अभी पता नहीं हम नरक में जाएंगे, ये सीरियस प्रश्न करते हैं वो, क्या होगा हमारा। लेकिन तुम्हारे थैली में जितना है उतना ही तुम्हारा है, तो तुमने नहीं कमाया वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। और आखिर में अभी पश्चाताप करके फायदा क्या है, जो पूंजी समय की थी वो भी समाप्त हो गई, जितना आपको दिया गया था पर्याप्त था वो, लेकिन हमने नहीं किया उसको। हर एक व्यक्ति को हमारे में से, चाहे हॉस्पिटल में काम करने वाले हो या बाहर रहने वाले हो, डॉक्टर हो या पेशेंट हो, हर लोगों का, हर व्यक्ति का मृत्यु का समय आएगा एक दिन। भले आज आप कितने भी जवान हो, एक दिन बुढ़े हो जाएंगे और अपना समय आएगा, तभी अपने को वो एग्जाम देना ही पड़ेगा। टाइम प्लीज नहीं होता है उसमें, नो टाइम प्लीज। टाइम दिया था आपको पहले, बहुत टाइम दिया था, लेकिन नहीं उपयोग किया उसका, तो अंतिम समय पे कुछ नहीं कर सकते। फिर वही है, फिर आना है, फिर पता नहीं जानवर बन के आएंगे, इंसान बन कर आएंगे, ये सब हकीकत है, आप मानो या ना मानो, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये जीवन का सत्य है, और हर व्यक्ति को इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। और इसका आसान उपाय यह है कि इस बात को अभी आप गंभीरता से ले लो, राइट नाउ। अगर मैं दीक्षा भी ले चुका हूं, प्रभु जी ने भी दीक्षा लिया हुआ है, फिर भी हमको हर दिन उसको एक गंभीरता से लेना पड़ेगा, रोज सुबह उठकर कि यही रास्ता है। ये जरूरी नहीं कि मैंने 35 साल बिताए, 40 साल बिताए दीक्षा लेकर जब कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा बेड़ा तो टिकट बुक है, मेरा कन्फर्म सीट है मेरा। नो सर, आपको टिकट निकाल के कन्फर्म सीट मिलने के बाद भी ट्रेन में चढ़कर बैठना होगा, उठा के नहीं बिठाएंगे आपको उधर, वो आपको मेहनत लास्ट में करनी पड़ेगी, टिकट आपके जेब में रहेगा और ट्रेन निकल जाएगी। हो सकता है ना ऐसे, और बारिश आ गई तो क्या होगा, आप स्टेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, और ट्रेन यहाँ से सीधा भरूच में रुकती है, तो कहाँ भरूच, भरूच भागोगे आप बारिश में। इसका मतलब क्या, पैसे कमाना, टिकट निकालना, कन्फर्म करना और बाद में ट्रेन पे जाके बैठना, तब जाके आपकी सफर शुरू होगी। ऐसे सफर शुरू नहीं होते अपने आप, आपको टिकट निकाल घर में हवाई जहाज नहीं आएगा उठाने के लिए, आपको जाना होगा। ये सब सोचने के लिए मनुष्य जीवन दिया। अगर यहां पर आपके बदले में कुत्ते और बिल्ली बैठते तो मैं ये बात कर सकता था क्या? आप मनुष्य हैं इसलिए मैं आपसे ये बात कर सकता, क्योंकि तो मैं जो कह रहा हूं वो समझने की बुद्धि भगवान ने, आप हम सबको भगवान ने दी है ये बातें जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि तो इस जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अभी आप जो अभिषेक करेंगे इधर, वो आपका नेट प्रैक्टिस है, उसी के बल पर आप भगवान के धाम तक पहुंचने वाले हो। जो जो उत्सव आप यहाँ पर मनाएंगे, जिसमें आपका दिल का भाग सहभाग देंगे आप, है ना, कोई ने फूल बनाया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने डेकोरेशन किया है, जो भी आप सहभाग देंगे और बाद में भगवान का नाम सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपको उसी कार्य का लाभ वहां पर जाने में मिलेगा, और वहां पर भी आप वही करोगे जो यहाँ पर प्रैक्टिस किया है। जो जो यहाँ किया है वही आपको वहां करने को मिलेगा। इतनी बड़ी बात है ये, इसलिए अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर उत्सव हो रहा है, हमारा मंदिर में परसों हुआ था और हॉस्पिटल में भी हुआ और भी होगा और होते रहेंगे, और मैं जाते रहूँगा कहाँ कहाँ, कि हमारा भाग्य है कि हमको ये भगवान के विषय के उत्सव मनाने के लिए मौका मिल रहा है। भगवान बहुत दयालु है, हमारे लिए कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो इस दुनिया में आते। देखो अभी उस मूर्ति को देखकर मैं इतना मोहित हो गया कि मूर्ति लगी नहीं मुझे, मेरा फोटो देखे आप हैरान हो जाएंगे, फोटो देखकर तो लगेगा बालक बैठा है और देख रहा है आपको, ये कृपा है भगवान की। नहीं तो वो पत्थर समान लगेंगे ना, आप निर्जीव लगेंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा। लेकिन भगवान मूर्ति के रूप में भी आते हैं ना, तो बहुत अट्रैक्टिव बन के आते, बड़ी बड़ी आंखें अट्रैक्टिव, थोड़ा श्रृंगार करेंगे तो इतना चमक के दिखते हैं, उनको सेवा का मौका देते हैं। अभी हमने क्या किया, गाड़ी में बैठा के लेके आया गया, इधर हाथ में फूल दिया हमने, खाली अर्पण किया, थोड़ी फूल लाने गया था मार्केट में। तो यही कृपा है ना, हमारे लिए कुछ कष्ट नहीं, भगवान डायरेक्टली आपको सेवा दे रहे हैं। तो ये भगवान कौन सा महीना, श्रावण महीने के वद्य पक्ष में अष्टमी के दिन हर्षण योग चंद्रोदय का समय रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के दिन का जन्म हुआ। और देखो, एक जन्म हुआ देवकी के कारागृह में, कंस के कारागृह में, जहां देवकी वसुदेव को रखा गया था। बीच रात में आए, काल कोठड़ी में आए वो, और काल कोठड़ी को पूरा प्रकाशित कर दिया उन्होंने, यहां तक कि प्रकाश इतना फैल गया कि सब लोग सतर्क हो गए बाद में, लेकिन पहले सो गए थे। लेकिन जब देवकी के गर्भ में आए थे ना, तो देवकी के गर्भ में इतना प्रकाश हुआ, गर्भ से इतना प्रकाश निकला कि सारे सैनिक सतर्क हो गए और जाके कंस को बोला, ऐसा ऐसा दिख रहा है अभी, पहले देवकी ओकी थी, एकदम लाइट दिख रहा है उसके आसपास, इतनी सुंदर हो गई है, इतना तेज आ रहा है। तो कंस समझ गया कि मुझे मारने वाला जो है ना आके बैठ गया अभी। तो जिसके अंदर भगवान होते हैं वो प्रकाशमान हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, उसके लिए तो भगवान उसके घर में प्रत्यक्ष आए और गर्भ में, गर्भाशय में गर्भवती बनाया हमने उनको। हमारे में कैसे आएंगे, जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो हमारे हृदय में स्थित हो जाएंगे, और जितने वो हमारे हृदय में है उतने हम प्रकाशित हो जाएंगे, आपके चेहरे पर रौनक आएगी। एक तो खुशी की रौनक आएगी, एक एक परम शुद्धि की रौनक आएगी। सोना कैसा होता है ना, अभी वो होता है ना मिक्सचर, होता है मिक्सचर तो वो चमकता नहीं है, लेकिन जितना शुद्ध होता है उतना वो शाइनिंग होता है। तो भगवान के आने से आप शुद्ध हो जाएंगे और आपकी शुद्धि का तेज आपके चेहरे पर आएगा, और दूसरा आनंद का तेज, क्योंकि जो व्यक्ति खुश होता है ना हमेशा उसके चेहरे पे एक रौनक होती है, खुशी की एक रौनक होती है। हैप्पी मैन हैज अ ग्रेट एफलजेंस। तो देवकी का स्वरूप प्रमाण है उसका। यहां तक कि भगवान का शत्रु देवकी को देखिए डरने लगा, अरे बाप रे इसके अंदर बैठा, बाहर आएगा तो मारूंगा उसको, लेकिन डर है कि वही मुझे मार सकता है। ऐसे भगवान है हमारे, उनको डरने की जरूरत नहीं थी, वो तो लीला करने के लिए गए। आप क्या बोलते हैं, भगवान ना भाग गए वहां से, कंस के डर से उधर से भाग गए। और वो उन्होंने कहा था कि वो सातवां गर्भ है ना, उसको देवकी से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना, तो भी डरपोके की बात है ना, वो भाग गए वहां से। फिर आपको बताऊं उसका रियल कारण क्या है, क्योंकि सातवें गर्भ के रूप में बलराम जी आए थे, और बलराम जी बड़े सट को दिमाग के, गुस्सा आ गया ना तो वो उनका स्वरूप है एक अनंत शेष का, वो बलराम है लेकिन उनका जो अवतार है वो अनंत शेष है, स्वयं अनंत शेष भी है वो, हजारों फन वाले। अगर समझो उनका जन्म होता था उधर कारागृह में और कंस को मारने आता था, तो ये पूरा लिखा हुआ है ना कथानक का स्क्रिप्ट लिखा है ना, वो ही फेल हो जाता। कथा में क्या लिखा है, कृष्ण मारेंगे, लेकिन बलराम ही उनको मार देते थे। इसलिए भगवान ने योग माया को बोला इनको ट्रांसफर कर लो, तो मेरे आने के पहले ही कंस को खत्म कर देंगे। इसलिए लोगों को क्या लगा, सातवां गर्भपात हो गया, मिस कैरेज हो गया देवकी का, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन उसका अंतर कारण क्या है, बलराम जी को भगवान ने रोहिणी के गर्भ में भेज दिया कि मैं आके मारूंगा। और एक बात है, यहां से निकले कंस, वसुदेव को उन्होंने बोला ना कि मुझे ले चलो, मुझे गोकुल छोड़ के आओ, वहां पर एक कन्या होगी उसको लेके आओ। तो जैसे ही कृष्ण को लेकर वो निकले ना, पता है क्या हुआ, सारे ताले खुल गए, उसकी चाबी उनके पास नहीं थी, अपने आप खुल गई। उनको भी श्रृंखला लगा के रखी थी, वो चेन लगा के रखा था, वो भी अपने आप गिर गए। तो कहते हैं 16 दरवाजे थे, 16 दरवाजे वो सारे अपने आप खुल गए। हाँ, तो भगवान को आपने अपने जीवन में स्वीकार करने के साथ क्या होता है, आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जहां जहां आप अटके पड़े हो, वो सब भगवान खोल देते हैं। केवल आप भगवान को अपना लो, उनको अपना बना लो, अपना मानो, अपना बना लो और स्वीकार कर लो उनको अपने जीवन में। और अगर आपने उनको अपने जीवन में सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया ना, तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे अपने आप। कोई ताला लगा के ये लगा वो लगा और कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सुना क्या आपने? जब वसुदेव के पास बहुत बड़ा चाबी का गुच्छा था और वो लगा के देख रहे थे, ये लगाया वो लगाया, फिर 15वां चाबी में खुला, फिर 16 ताले खुले, उन्होंने बहुत समय लगा उनको, तब तक सुबह हो चुकी थी, ऐसा सुना क्या आपने? गोद में लिया और बाहर चलने निकले, अपने आप सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर गए तो बहुत बड़ी वर्षा हो रही है, और सुनो क्या हो गया, बाहर निकले तो कौन आया उनके साथ? अनंत शेष आ गए उनके पास। तो कहते हैं जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उनकी रक्षा के लिए अनंत शेष उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वसुदेव को पता भी नहीं होगा शायद, वो तो अपने भाव में जा रहे हैं, लेकिन उनको क्योंकि उनके हाथ में भगवान है, उनकी रक्षा के लिए अनंत शेष उनको छतरी देकर जा रहे हैं। ठीक है, ये सीन कैसा है? वो जा रहे हैं और वो नाग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे देखते तो क्या हुआ, जमुना जी को इतनी बड़ी बाढ़ आ रही है। अंतर्गत कारण क्या है उसका? यमुना जी बहुत पहले से भगवान के धाम से नीचे आकर बैठी हुई है, वेट कर रही है कि आएंगे आएंगे, आने वाले आने वाले, उनके लिए सब रेडी करके रखा है, आएंगे आएंगे, और अभी आ गए श्रावण मध्य अष्टमी की रात को आ गए, तो वो उछाल रही है आनंद से। हमको क्या लग रहा है? बाढ़ आ रही है। लोगों को क्या लग रहा है? बहुत तूफानी वर्षा हो गई, बहुत तूफानी बारिश आ रही है। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? यमुना देवी भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए उछल कर आतुर हो रही है कि कब मेरे स्वामी का मैं चरण स्पर्श करूं। और वसुदेव देखो कितने डिटरमाइंड है, ऐसा नहीं कि अच्छा बारिश आ रही है चलो वापस चलते हैं, बारिश रुकेगी तो बाद में जाएंगे, अभी क्या करेंगे, कैसे जा सकते उसमें, बोट भी नहीं है, रात को कोई नाव भी नहीं है, इतना समय अंधेरे का समय है, लेट्स गो बैक ना अभी, या तो अंदर वेट करता हूँ, एक लास्ट दरवाजा 16 दरवाजा उसके अंदर जाके बैठता हूँ, तो शैडो है थोड़ा सा, जाके बैठता हूँ देखता हूँ कब बारिश रुकेगी, रुकेगी तुरंत जाऊंगा फिर। ऐसा किया क्या उन्होंने? नहीं, आदेश था भगवान का अभी जाना है, तो फिर जिंदा रहूं या मरूंगा, लेकिन प्रयास तो मुझे करना है। पहले पानी में घुसे थे इतना तक पानी था, फिर घुटने तक था, फिर जिधर तक था, फिर नाभि तक था, फिर छाती तक आया, फिर गले तक आया, लेकिन जा ही रहे वो जा ही रहे, उतने में भगवान ने ऐसे बाहर पांव निकाले। और जैसे ही यमुना जी को पैर का स्पर्श हुआ ना, रास्ता दे दिया। तो जो नामुमकिन है वो हुआ कि नहीं? अभी वो इतनी बाढ़ में कभी रास्ता कभी मिलता है क्या? कभी कभी नहीं मिलता। पानी रुकेगा तो इतना तक हो जाएगा तो आप जा सकते हो क्रॉस करके, लेकिन यमुना जी ने भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त होते ही वसुदेव को रास्ता दिया, मानो वसुदेव सुखे रास्ते में चले गए क्रॉस करके। और सुबह भी ऐसे आए, रास्ता दिया और बीच में चल के आए। ये भगवान के आपके जीवन में होने का चमत्कार है। क्या हम सीखते हैं इसके अंदर? कि भगवान का, भगवान को अगर आपने अपने जीवन में स्वीकार किया है अपने नाथ के रूप में, स्वामी के रूप में, तो आपके जीवन में सब रास्ते आपको मिल जाएंगे। जहां आपको लगता नहीं मिलेगा वहां पर भी आपको रास्ता मिलेगा, क्योंकि वो भगवान जिसको आपने स्वीकार किया है उनका काम है, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। और आपको, आपने उनको नहीं स्वीकार किया तो आप तड़पते रहेंगे और वो नदी में डूब जाएंगे। फिर यमुना जी के अंदर और एक कथा भी है कि भगवान ने वसुदेव के बास्केट से जंप मारा, पूरा इतना सा बालक ने जंप मारा पूरा पानी के अंदर, और वसुदेव चिल्ला रहे हैं, अरे कोई लो उस बालक को, कोई लो, गिर गया पानी में। लेकिन मुझे बताने में भी समय लग रहा है आपको कि वो गिरे और वो बोले, लेकिन ये सब ऐसे क्षण में हुआ, वो गिरे वो बोले और रास्ता खुल गया, और उन्होंने कैच भी किया बच्चे को, तुरंत गोद में रखा। मतलब क्या हुआ? भगवान ने यमुना जी को अपना अंग संग दिया, क्या कहते हैं, शरीर का संग दिया, और यमुना जी को चरणामृत बना दिया। चरणामृत का मतलब क्या होता है? अब यहां पर अगर पंचामृत का अभिषेक करेंगे तो जो बनेगा उसको क्या कहते हैं? चरणामृत या पंचामृत, उसको हम लोग पीते ना, क्योंकि भगवान के अंग संग होके वो जल आया हुआ है, दूध दही मक्खन जो भी आपने लाया है उससे चरणामृत बनता है। और अगर भगवान ने छलांग मार लिया तो उसके अंदर वो क्या बन गया? चरणामृत। तो भगवान ने जन्म से ही यमुना जी को चरणामृत बना दिया। और उसके आगे कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ, गोपियों के साथ कितनी बार जल में छलांग मारी है, और जमुना जी ऐसा अमृत है। इसलिए मैंने इस कथा के आरंभ में भी जो प्रार्थना किया ना, उसमें भी जमुना जी का स्मरण किया मैंने, क्योंकि वो जमुना जी इतनी भाग्यवान है कि अभी भी बह रही है चरणामृत। तो एक कथा ये हुई, लेकिन वहां पर भी एक कथा है, वहां पर भी यशोदा देवी प्रेग्नेंट थी, सेपरेटली प्रेग्नेंट थी वो, और वहां पर भी उनका अलग जन्म हुआ है, वहां पर भी कृष्ण का अवतरण हुआ है। ये चार भुजा वाले जन्म हुए, दो भुजा वाले बने और यहाँ पर आ गए वसुदेव के साथ। उधर ऑलरेडी कृष्ण जन्म हुए थे, वो दो भुजा वाले थे, वृंदावन के कृष्ण थे वो, उनके साथ में एक कन्या भी जन्म हुई थी, वो ट्विन प्रेगनेंसी थी, डबल प्रेगनेंसी, एक लड़का और लड़की। लड़की कौन थी? योग माया और कृष्ण स्वयं। तो जब वसुदेव गए ना उनको रखने के लिए, तो उनके हाथ वाले कृष्ण थे ना हाथ में, वो कृष्ण में विलीन हो गए, दो के एक बन गए। बचा क्या? एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्री को लेकर वापस आए, और वो पुत्री योगमाया थी ना, वो चंडिका का स्वरूप थी वो। योगमाया मतलब भगवान की बहुत प्रिय शक्ति है वो। भगवान ने उनको वादा किया था, अगर तुमने सातवें गर्भ को अगर ट्रांसफर किया ना, उसके फल के रूप में मैं तुम्हें अपनी बहन बना लूंगा, तुम्हारे साथ एक गर्भ में रहूंगा, मतलब इसके यशोदा के गर्भ में। तो 9 महीने ये योग माया यशोदा के गर्भ में रही है, कृष्ण के साथ एक गर्भाशय शेयर किया उन्होंने, और जन्म हुआ तो भगवान ने उनको बहुत बड़ी शक्ति दी है कि पृथ्वी में सब जगह तुम्हारा पूजा होगी, भवानी, चंडिका, पार्वती, अनेक नामों से आपका, शारदा, अनेक नाम से आपका पूजन किया जाएगा, आपको आशीर्वाद की शक्ति प्राप्त होगी, आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं, विश्व का संचालन कर सकते हैं, सब बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो वो जब वापस गई है और कंस ने उसको मारने का प्रयास किया, तो वो आकाश में उड़ गई है, और 8 भुजा वाली देवी बनकर कंस देख रहा है उसको, भाव प्रेम, इतनी सी बालिका थी और मैं उसको मारने का प्रयास कर रहा था, वो आकाश में जाकर 8 भुजा वाली बन गई है, और साथ साथ सारे देवतागण जितने भी है वो उसकी पूजा कर रही है, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसका स्तुति कर रहे हैं, उसका गायन कर रहे हैं, उसके लिए आरती उतार रहे हैं। तो देखकर कंस हैरान हो गया एकदम, और फिर उसको पश्चाताप हुआ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हमने क्या किया, और अपने बहन के चरणों में गिर गया। अत्याचारी कंस, जो उसने 6 नवजात बालकों को पत्थर पर पीस कर उसका वध किया, है ना, साधारण वध नहीं किया, निर्दयता से, क्रूरता से शिला पर पटक कर छिन्न विच्छिन्न कर दिया था बालकों को, भी माता के आंखों के सामने। तो वो कंस जो है ना अभी माता के चरणों में गिरा है, मतलब बहन के चरणों में गिरा है, और क्या बोल रहा है, अरे मेरी प्यारी बहन जी, मैं तो करता नहीं हूं, मैं तो कठपुतली हूं, विधाता मेरे हाथ से पता नहीं क्या क्या करवाता है, मैं तो करता नहीं हूं, विधाता मेरे हाथ से करवाता है, विधाता की ऐसी इच्छा थी कि तुम्हारे ये जीव तो थे मेरे हाथ से मृत्यु हो जाए, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है शास्त्र वाली। तो कहता है बहन जी मुझे माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं नहीं चाहते हुए भी मेरे हाथ से ये काम हो गया है, और आप जानती हो कि करने वाले भगवान है, तो आप मुझे माफ कर देना, कितना अच्छा बात है ना, सो सिंपल एंड नाइस। ऐसे ही चोर लोग होते हैं, तो समय पर अपना कलर बदलते हैं, समय देखकर कलर बदल देते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग कहता वापस कलर चेंज, ये रात को वापस कलर चेंज। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है समझ लो, देवकी ने कंस को तत्काल माफ कर दिया। अभी आप ना एक मिनट के सोचो कि आप देवकी हो, हाँ आप सोचो कि आप देवकी हो, और आपके सामने आपके 6 बालकों को आपके भाई ने क्रूरता से पीस पीस कर मारा है, और वही भाई आपके आप चरणों में आके गिर रहा है, बोले दीदी मुझे माफ कर दो, आप क्या करोगे? सच बताओ, सिंपल बताओ, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, आप तो महान संत हो फिर से, मतलब सब लोग एकदम महान। मैं अगर होता तो मैं वो झुकता था ना मेरे पैर पे, पहले उसके मुंह पे लात मारता, बड़ा भी अच्छा मौका है सारा गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि कितना गुस्सा था, दुख था, कितना दर्द हो गया रहेगा माता जी को, देखो आप सोचो जरा, हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि देवकी कितने कष्ट से गुजरी है, वी कैन नेवर इमेजिन। कथा सुनने में अच्छा था, हाँ देवकी का 6 पुत्र का वध हो गया, ऐसा वैसा हो गया, कृष्ण आए, वेरी नाइस स्टोरी, गुड स्टोरी, लेकिन देवकी के जरा वंश में जाकर सोचो अगर आप देवकी होते तो आपकी क्या हालत होती। तो ऐसा होने पर भी देवकी क्षमा कैसे कर सकी, क्योंकि क्षमा करने के लिए बहुत शांति की आवश्यकता होती है। गुस्से वाला आदमी क्षमा नहीं कर सकता, जिसका पहले आपने बहुत नुकसान किया है, बहुत हानि पहुंचाया है, उसको बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है, उसको आप क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करने के लिए मन बहुत स्वच्छ चाहिए, और देवकी का वैसा कंडीशन नहीं था, ऑलरेडी 6 बच्चों का खून हो चुका था उसकी आंखों के सामने, फिर भी देवकी ने क्षमा करने की शक्ति कहां से प्राप्त कर ली, क्योंकि कुछ ही पलों के पहले कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया था, और कृष्ण भगवान का दर्शन होते ही मन में जो भी था ना, वो पश्चाताप था समझो, या क्रोध था कंस के प्रति, द्वेष की भावना, जो भी गुस्सा था, सारी निगेटिव भावना नष्ट हो चुकी थी, और उसका मन नष्ट तो हो चुका था, सब कुछ निगेटिव नकारात्मक चीज नष्ट तो हो चुकी थी, लेकिन आनंद का भी अनुभव हुआ था उसको भगवान को देखकर। इतना आनंद का अनुभव किया, काल कोठड़ी में भी आप सोचो काल कोठड़ी भगवान अवतरित हो गए तो कितना आनंद हो गया रहेगा उसका, इतना आनंद का अनुभव किया। आनंद का एक स्वभाव होता है, जब आनंद होता है ना तो आदमी सब पिछले सब कुछ भूल जाता है, सही बात है, ओके आई एम ओके एंड फाइन। आनंद में वो शक्ति होती है, आपने पिछले सारे मन में जितनी भी नेगेटिव चीजें ना वो आनंद नष्ट कर सकता है। लेकिन जब भगवान को देखने का आनंद होता है, भगवान को प्राप्त करने का आनंद होता है, तो मन में कोई किंतु परंतु बचता ही नहीं है। इसके कारण देवकी कंस को एक क्षण में माफ कर सके। हम भी अगर किसी को माफ करना चाहते हैं ना तो मन में कृष्ण होना जरूरी है, कृष्ण भावना के बिना हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। देखो मैंने मेरे परिवार में भी देखा है, बचपन में झगड़ा हुआ था जब हम स्कूल में थे, आज वो 60 साल के हो गए, आज भी उनकी कटती है पूरी बात नहीं करते, क्योंकि क्षमा ही नहीं कर सकते। अरे बचपन में था वो, थोड़ा मैंने कुछ छेड़छाड़ किया था तो उधर झगड़ा हुआ था तो 2 साल बात नहीं किया था, आज तक बात नहीं कर रहे, क्यों? क्षमा करने की शक्ति नहीं है उनके अंदर, क्षमाशीलता नहीं है। अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए क्षमाशीलता आवश्यक है। आपके पति हैं, आपके पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, कितना घर में अपराध करते हैं फिर भी आप रहते ना उसके साथ में प्रेम से, नहीं तो क्या है, लव एट फर्स्ट साइड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। हाँ एक बार नजर मिलाया तो प्रेम हो गया, शादी करके झगड़ा किया तो डिवोर्स हो गया, इसको प्रेम नहीं बोलते। क्षमाशीलता होती ना तभी प्रेम होता है, तभी रिश्ते बनते हैं लंबे समय तक। आप बोलते ना इनका 60वां सालगिरह है शादी का, वैसे काटे टेक के आ रहे थे, मतलब कितना दोनों को सहन किया होगा उन्होंने, बस इतने साल में कितने झगड़े हो गए होंगे उनके, फिर भी वो ऐसा बोलने करेगी मैं जा रही हूँ जो करना है करो, ऐसा नहीं करते ना। तो क्षमाशीलता होती है तो ये रिश्ते बहुत लंबे समय चलते हैं। तो क्षमाशीलता हम लोग सीखते हैं देवकी से कि कृष्ण की प्राप्ति होने पर क्षमाशीलता प्रचुर मात्रा में आपके अंदर होगी, आप सबको क्षमा कर सकते हैं, सारे अपराध आप माफ कर सकते हैं, और वो देवकी ने किया। और कितना त्याग किया बताओ, एक कृष्ण को जन्म देने के लिए। मुझे हमेशा लोग कहते हैं हमेशा, अरे उसको पता था कि 8वें गर्भ के रूप में भगवान आएंगे, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, हर एक बच्चा हो रहा है कंस मार रहा है, हर एक बच्चा हो रहा है कंस मार रहा है, तो कॉमन आदमी क्या कहेगा, अरे सिंपल है बच्चे में पैदा करो ना, तो ना होगा बच्चा ना मारा जाएगा बच्चा, कॉमन सेंस है ना। अगर प्रेगनेंसी होगी बच्चा होगा तो मारने को आएगा वो, लेकिन वो आएगा बार बोल रहा है प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही है, फिर क्या करना, जाओ 50 हो रही। तो लोग क्या कहते हैं कि देवकी और वसुदेव के पास एक सिंपल उपाय था कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं, तो क्यों किया उन्होंने सब कुछ ये, क्योंकि उनको पता था कि 7 होने के बाद 8वां के रूप में मेरा भगवान मेरे गर्भ में आएंगे और जगत का उद्धार करेंगे। तो केवल खुद का उद्धार करने सोच नहीं रहे हो, जगत का उद्धार करेंगे, क्योंकि कंस के द्वारा जगत को कष्ट था, वो मेरे 8वें गर्भ के रूप में आएगा और वो जगत का कष्ट का निवारण करेगा, इसलिए उन्होंने इतना कष्ट सहन किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां गायब और 8वां भी आया और 2 मिनट के बाद में चला गया, उसको क्या सुख मिला बताओ, एक बार पहले दूध पिलाया बाद में दिखा भी नहीं वो 12 साल तक। माँ को क्या इच्छा रहती है, नन्ना नन्ना बालक होगा मैं गोद में खिलाऊंगी, उतने दुतले बोल बोलेगा, मैं लोरी सुनाऊंगी, मैं उसका स्नान कराऊंगी, जबला पहनाऊंगी उसको, तोता दिखाऊंगी, मैना दिखाऊंगी, है ना। वो सब मातृत्व का मतलब क्या होता है, आपको बालक चाहिए अपने गोद में, ताकि वो बालक आपके सारी खुशी आपको देता है, सारे वात्सल्य की पूर्ति करता है, आपके मन की पूर्ति करता है। वो एक बालक आएगा ना तो आपको माता बनाकर आपको धन्य कर देगा वो। लेकिन देवकी को भाग्य मिला क्या उसका, इतना कष्ट करने के बाद में सारा आनंद यशोदा को मिला, नंद महाराज को मिला, और ये लोग यहाँ तड़पते रहे, वो भी वरी में, तो पता नहीं वहां पर पहुंचेगा कंस, वहां पर भी मारेगा, वहां पर भी किसी किसी को भेज रहा है, न्यूज जा रहे ना आज, शप्टासुर गया, तृणावर्त गया, केशी गया, जुष्टासुर गया, हर रोज का न्यूज है। वो गया, पता नहीं विधाता ने उसको मार दिया, ऐसा उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि कृष्ण बलराम ने मारा, वो टेंशन भी वहां पर है, मतलब वहां पर है, बालकों का दर्शन नहीं हो रहा है, और खबर भी आ रही है उसको मारने के लिए, आज ये गया वो गया, कितना टेंशन है उनको, 12 साल तक टेंशन सहन किया उन्होंने, तब जाकर भगवान उनको वहां मिले, और तब जाकर कंस का वध किया, और तब जाकर प्रणाम किया कि माता जी क्षमा करना, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, अभी आपके पास ही रहेंगे, क्या आदेश है बताओ, उनका हमारे पास ही रहो, आपको गुरुकुल भेजना है, आपको जनित संस्कार करना है, आपको क्या क्या करना बाकी रहेगा, हम कर नहीं पाए आपका संस्कार को। तो वो जो सुख चाहिए था ना, वो 12 साल के बाद मिला, वो भी इतना बड़ा हो गया बच्चा, दूध पीने के लिए नहीं आ सकता अभी, जो माता को सुख होता है ना बालक को दुग्धपान कराने का, स्तनपान कराने का, वो सुख नहीं मिला उनको, इतना त्याग किया। आज क्यों चर्चा कर रहे हैं उसकी, हमारे लिए किया, आपके लिए किया, इतना त्याग क्यों किया, ताकि वो भगवान हमारे लिए आए यहां दुनिया में लीला करें। वो देवकी ने इतना त्याग किया इसलिए हमारे लिए आज भगवान है, इसलिए हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, कुछ कुछ उत्सव मना रहे हैं, भगवान का याद कर रहे हैं। वो भगवान को आने का रास्ता देवकी ने बनाया अपनी भक्ति के माध्यम से, तो अपना ऋण अदा करना चाहिए देवकी के प्रति, कि आप थे इसलिए भगवान आए, हमको भगवान मिले, आपने उनको यहाँ पर आने का इतना सहन करके दुनिया को भगवान दिया, खुद उसका लाभ नहीं लिया भगवान का। तो जन्माष्टमी का मतलब क्या है, यही है अपना ऋण अदा करना भगवान के लिए, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू देवकी, थैंक यू वसुदेव, कि आपने हमारे लिए कितना कष्ट किया। ये भावना होगी ना तो आपके जीवन में रोज जन्माष्टमी होगी। आप बताइए मुझे, जन्माष्टमी साल में कितनी बार होती है, एक बार होती है, यस एक बार होती है, लेकिन वो जन्माष्टमी आपके जीवन में हर रोज हो सकती है। कैसे, जिस समय, जिस क्षण, समय भी नहीं, जिस क्षण में आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान आपके हृदय में जन्म लेते हैं। तो अगर आपने रोज भगवान के नाम का जप करना शुरू किया, रोज भगवान आपके हृदय में जन्म लेंगे, रोज हमारे जिह्वा पर, हमारे हृदय में वो जन्म लेते हैं, सुबह 2 घंटा तक हमारे साथ में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में संग करते हैं, उनके संग का अनुभव करते हैं, उनके संग का अनुभव मतलब क्या, आनंद का अनुभव करते हैं, उनका नाम लेते हैं और आनंद में रहते हैं रोज सुबह, नींद पूरी नहीं होती फिर भी उठ जाते हैं, क्योंकि ये समय पे बैठेंगे तो उनका संग मिलेगा। मैं क्या बताऊं, मेरे को फनी चीज याद आ रही, हमारे बिल्डिंग में ऐसे कोई जवान लड़के लड़कियां थे, उनका प्रेम था एक दूसरे के प्रति, तो सुबह एक हमारे बचपन में ना दूध का केंद्र हुआ करता था, मिल्क सेंटर, तो बोतल लेके जाते खाली वाली, वो देके भरी वाली बोतल लेके आते, आर्य डेयरी, आर्य मिल्क डेयरी से, टोंड एंड होल मिल्क, एक ब्लू वाला और एक येलो वाला बूझ रहता उसके ऊपर। तो वो जो जवान लड़का है और जवान लड़की है, उनको सुबह उठने का इतना चाव नहीं है, लेकिन वो दूध लेने जाती है तो मैं भी उठूंगा और उसको दूध लेने जाकर उधर मिलूंगा सुबह उसको दूध के केंद्र के पास, क्योंकि सुबह ही दूध के केंद्र खुलता है, 10 बजे नहीं खुलता है वो, 6 बजे खुलता है, 7 बजे बंद। तो वो जवान लड़का, उसको सोने की इच्छा है, लेकिन वो सुबह उठकर उसको मिलने के लिए दूध केंद्र पे जा रहा है, क्योंकि दूध लेके आ रहा है, अभी दूध लेके आ रहा है, रास्ता में मिल रहे, क्योंकि उनको वो आनंद की अपेक्षा है कि मुझे उसके मिलके आनंद मिलेगा तो मैं सुबह उठ के जाऊंगा। वैसे ही हमको भी सुबह नींद आती है, लेकिन हम उठते हैं क्यों, क्योंकि हमारा, हमको भगवान पर प्रेम है और उनका नाम जप करने पर हमको आनंद मिलता है, इसलिए उनको मिलने के लिए हम उठते हैं, तुरंत भाग के बाथरूम में जाके स्नान करते ठंडे पानी से और बैठ जाते हैं जप करने के लिए। तो काफी लोग झूम पे आ जाते हैं जप करने के लिए, क्योंकि उन सबके संग में भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए हम हर रोज जन्माष्टमी मनाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आपको साल भर की वेट करने की जरूरत नहीं है, और साल भर भी आप उत्सव करो जिस दिन आएगा उनका तिथि, लेकिन साल भर वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको हर दिन भगवान के जन्म के उत्सव मनाने की अवसर प्राप्त है, और वो आप ले लो। अभी कैसा है, लोग ना देने में कंजूस होते हैं, बहुत सारे लोग। आप डोनेशन देने जन्माष्टमी को मुख्य दी देव 101 देगा और 51 देव लोगों को 51 देगा 101 खूब होता है। और पगड़ बढ़ने के समय क्या 500 ही दिया, 1000 मिलना चाहिए था। हम लोग लेने में बहुत उत्सुक रहते हैं और देने में बहुत कंजूस रहते हैं, लेकिन इस विषय में हम लेने में ही कंजूस हैं। भगवान आपको लुटा रहे, भगवान का नाम दे रहे भगवान, और हम लेने में इधर कंजूसी कर रहे हैं। तो टाइम नहीं है, सुबह उठने को नहीं होता है, कितना घर में काम रहता है, दिन भर मेहनत करते हैं, काम पे जाते हैं, कपड़ा धोना है, बच्चों को पढ़ाई देना है, ऑनलाइन झूम पे बैठना है, उनको पढ़ाई करना है, कितना तकलीफ है सर, शक्ति नहीं बचती ना। तो सुबह नहीं जाती है, फिर उठते ही काम पे जाना होता है, खाना बनाना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, कितने बहाने देखो, 50-51 बहाने हो गए ना उठने के लिए, जॉब करने के लिए। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड को मिलना है तो आप 5 बजे बोलो, 4 बजे बोलो, हम दूध देने जाएंगे केंद्रों पे। कमी किसकी है, प्रेम की कमी है, समझ बूझ की कमी है। अगर समझ बूझ होगी और प्रेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अमेरिका जाना है, एडमिशन मिला है, और सुबह 2:30 बजे की फ्लाइट है, 11 बजे एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना है, रात भर जगना है, लाइन में लगना है, इमिग्रेशन वीजा ये वो, फिर बोर्डिंग फ्लाइट पे, फिर वो एक्साइटमेंट, फिर रात भर गई, फिर उधर 12-16 घंटा प्रवास करना है, वहां जाके 2 दिन का नींद खत्म आपका। लेकिन खुशी की बात क्या है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे अमेरिका का एडमिशन हो गया है, प्रेम और आनंद हो गया आपको। वैसे भगवान के लिए होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जाओगे एक दिन लौट के आना पड़ेगा, सुख नहीं है वहां पर भी, याद रखना मैं आपको बताता हूँ। बोलने के लिए अच्छा है, मेरा लड़का ना अमेरिका में, लेकिन अभी यहाँ पर क्या डेल्टा वेव चल रहा है उधर, और कल के दिन में अमेरिका में ऐसा तूफान आया है ना, ऐसे एक वीडियो आ गए हैं, बेचिराख हो गया, बेचिराख पूरा एक जगह पर, कितने लोगों का महंगा महंगा घर ऐसा पूरा कचरा हो गया, पूरा जस्ट मलबा बन गया है, इकट्ठा करके फेंक दो। तो ये मत समझना कि यहाँ नहीं है वहाँ है, वहाँ नहीं है इधर है, वहाँ के लोग यहाँ के लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, सब जगह खड़े ढूंढ ही रहे, बस इतना एक पक्का काम है, सब जगह ढूंढ रहे हैं खुशी, वो ना उधर मिल रही है, ना ईस्ट में है, ना वेस्ट में है, और नॉर्थ में है, ना साउथ में, किधर भी खुशी नहीं है, खुशी केवल तुम्हारे हृदय में। वो कौन सा पक्षी है, तो प्राणी है वो कस्तूरी मृग, सदा आपको कस्तूरी मृग मतलब जिसके नाभि में वो होता है कस्तूरी, इतना बड़ा बॉल होता है इधर उधर, और वो कस्तूरी मृग पूरे जंगल में ढूंढते रहता है खुशबू कहां से आ रही है, पूरे जंगल में घूमता है वो खुशबू को ढूंढते हुए, और खुशबू कहां रहती है उसके नाभि में, फिर वो पासे फारदी आता है, हंटर आता है, उसको पकड़ता है, वो काटता है, अपने घर में लेके जाता है और अत्तर बना के बेचता है। और ये बेचारा कस्तूरी मृग क्या है, जिंदगी भर खाली भटक रहा है, किधर से खुशबू आ रही है, किधर से खुशबू आ रही है, बताने वाला कोई नहीं है कि भाई इधर ही है तेरे, ऐसे ही हमें बताने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे किसी ने बताया था इधर ही है वो खुशबू, कुठे शोधिशी रामेश्वर अन कुठे शोधिशी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी। इथे भगवंत बसलेत ना, तुम्हाला माहितच नाही आहे, आणि दुनियाभर खुश आनंद शोधतोय, तो आनंद प्राप्त करो, उसके लिए जिंदगी दियो। अगर वो जिंदगी देकर भी आनंद प्राप्त नहीं किया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम पुन्हा पुन्हा आईच्या गर्भामध्ये यायचं आहे, बुकिंग आहे तुमचं ऑलरेडी, काय करणार, तर ते कार्य नाही केलं तर पुन्हा पुन्हा यायचंच आहे, त्याला चॉईस नाही की मला मनुष्य द्या, मला मफतलांच्याकडे जन्म द्या, पुढच्या जन्मात मला अंबानीची मुलगी होऊ द्या, असं चॉईस नाही करू शकत तुम्ही. तुमच्या कर्मात जे लिहिलं आहे, तुम्ही जे कर्म केलं आहे तेच मिळणार. मग ते कुत्रा असू शकतं, मांजर असू शकते, देवता असू शकते, मनुष्य असू शकते, गरीब श्रीमंत काय पण असू शकते. चॉईस तुम्हाला नाही आहे. तर आत्ता चान्स आहे आपल्याला. आपल्या आत्ता आपल्या हातामध्ये मनुष्य जीवन आहे, बुद्धी पण शाबूत आहे, हातपाय ठीक आहेत, सगळं चान चाललं आहे, पोटात अन्न आहे, अंगावर वस्त्र आहे. असं काही नाही ना की आपण रस्त्यात बसलो आहोत, अंगात बसलो नाही, खायला अन्न नाही, असं काही नाही. आपण ओके आहोत. हां, बिरला अंबानी असो आपण, पण आपण ओके आहोत. अशा परिस्थितीमध्ये भगवंताची प्राप्ती करायचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आणि नाही केला तर काळ तुमच्याकरता थांबणार नाही. आता तरुण आहात आपण, नंतर म्हातारे येऊ, काठी टेकात येऊ, आणि काळ निघून जाईल आपल्याकडे. आत्ता आपल्याला करायचं आहे, उद्या नाही करायचं आहे, आजच करायचं आहे. जे चांगलं आहे ते आज करायचं आहे, ते पोस्टपोन नाही करायचं. आपण काय करतो, आज नको उद्या करू, आपलं रिटायरमेंट करू, सगळं झालं, लग्न झालं मुलींचं तेव्हा करू. पण ती आयडियल वेळ कधीच येत नसते. आयडियल आदर्श समय लाईफ में कभी भी नहीं आता है. जो आपको चाहिए वो कभी भी नहीं आता है. आपको दिए हुए समय में ही करना है वो. और अपने भाग्य की गिनती करनी है कि मैं परशुराम क्षेत्र में बैठा हूं. तो मुझे बोल रहे थे ना, स्थान का महात्म्य क्या है कि परशुराम क्षेत्र है, यहां पर परशुराम जी ने तीर्थ बनाए, उसमें से 108 में से एक तीर्थ आपका है जहां पर आप बैठे हो. निर्मल कुंड विमल कुंड के बगल में बैठे हो, एक तीर्थ उसमें. ऐसे 28 तीर्थ इधर के आसपास ही है, टोटल 108 है. पालघर तक, बिरार पालघर, ये पूरा क्षेत्र है परशुराम जी का. आप उस जगह बैठे हो जहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ने आकर निर्मल कुंड में स्नान करके यहां पर लीला किया. वो यही निर्मल कुंड है आपका, जहां पर भगवान ने आकर स्नान किया था कलयुग में. उसके पहले वाले युग में कृष्ण रुक्मिणी आए थे यहां पर, बलराम जी स्वयं आए थे. उसके पहले वाले युग में राम और सीता भी यहां पर आए थे. इतना प्रचंड स्थान है ये, सब लोग कॉमन है ये. मलबार हिल में आए थे, बाणगंगा में सब लोग. राम पहले आए थे, फिर कृष्ण आए थे, फिर चैतन्य महाप्रभु आए थे. तीनों लोग वहां से उत्तर दिशा में प्रवास करते करते इधर आए थे, वहां का दर्शन करके आगे चले गए. उस स्थान में हमारा अस्पताल है, सोचो आप. कभी कभी कैसा ना, जैसे कस्तूरमृग को पता रहता नहीं ना कि उधर खुशबू कहां से आ रही है, इधर रहती है. वो हमको भी अपने पास सब भाग्य है, लेकिन पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है. सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान होता है. सब कुछ होते हुए भी ज्ञान ही नहीं है. पिताजी बिलियनेयर है लेकिन पता ही नहीं है, रुपए बूट पॉलिश कर रहा है. अज्ञान, अपने भाग्य की पहचान ही नहीं है. तो ये हमारा भाग्य है, रोज याद करो उसको कि ऐसी जगह पर हमको काम करने को मिला है. यहाँ पर ना लहसुन है, ना प्याज है, ना मुर्गा है, ना बकरा है, कुछ खाने को नहीं मिलता है. केवल शुद्ध खाना मिलता है, भगवान का नाम गूंजता है, प्रामाणिक सेवा होती है, कोई चीटिंग, कोई चोरी चपाटी रोटी होती नहीं है. तो सबका कर्म लगता है अपने को. ऐसे शुद्ध जगह पे नौकरी मिली हुई है, भगवान का उत्सव हो रहा है, भगवान का नाम है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बदले में हरे कृष्णा बोलते हैं. और जीवन में क्या चाहिए बताओ आपको. लोग तड़प रहे हैं सब कुछ होने पर भी. हमको तड़पने से मुक्त होने का रास्ता मिला है, इसलिए अपना लो. आपको लगेगा कि मैं हर साल आके यही बोलता हूं, हर साल नहीं, आगे जितना तक जिंदा हूं और आऊंगा तो यही बोलूंगा. मेरे पास कोई नया मसाला नहीं है, सेम ओल्ड पुराना मसाला है, नई पूड़ी में लेके आता हूं. अंदर का मसाला सेम है, पूड़ी बदल के लेके आता हूं. मैसेज सेम है हमारे लिए. जब तक कैसे ना, जब तक आप पहली पास नहीं होते हैं तो सेकंड में कैसे प्रवेश मिलेगा आपको. पहले में वो 5 बार फेल हो गया तो अरे प्रभु जी 4 बार हो गया तो बस हो गया ना, 5th या 5th टाइम में उसको प्रमोट करो. लेकिन सर नहीं हो सकता है, उसको पास होना ही पड़ेगा. जैसे आपने पहला कदम उठाया तो आपको अगला कदम बताएंगे, लेकिन पहले कदम पे अटकेंगे तो क्या बोलेगा, बेटा ले लो पहला कदम, बेटा ले लो पहला कदम. आप लोग ने अपने बच्चे को चलने को सिखाया होगा ना, कैसे सिखाया आपने. जब तक उसने पहला स्टेप नहीं लिया तब तक माँ लगी रही, बेटा ले लो, बेटा ले लो, बेटा ले लो. बेटे ने लिया फिर आपने उसको बोला अभी सेकेंड ले ले, अभी सीढ़ी भी चढ़ सकते हो, है ना. ऐसा ही किया ना आप लोगों ने. आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड हो, सबको अनुभव है आपको, लेकिन आप लोग उसका अनुभव को अप्लाई नहीं किया अपने लाइफ में. अभी करो, भगवान के विषय में, भगवान के रास्ते में पहला कदम उठाओ, फिर देखो भगवान आपके लिए क्या चमत्कार करते. हमारे सबके जीवन में भगवान ने वो चमत्कार किया है, उसका अनुभव हमको है। वो अनुभव क्या है? इतना बड़ा भक्ति विधान अस्पताल बना है ना उधर, तो हम बच्चों ने कभी स्वप्न देखा था कि हमारा ऐसा ऐसा होगा? आप भी चिमटा निकालते अपने आप को, ये सच्चा है क्या सपना है? तो हमने एक कदम उठाया, भगवान ने कितने हमारे लिए कदम उठाए, कितना सहारा दिया। अभी एक नहीं है, पीछे भी और बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया, और वो एक नहीं है, इधर 12, 13, 14 हो गए। ये भगवान का कदम है, हमने एक कदम उठाया था, भगवान ने इतने सारे कदम उठाए हमारे लिए। तो भगवान अपने भक्तों का गौरव करना चाहते हैं, उनको सहायता करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं, उनका मित्र बनना चाहते हैं। सुहृदम् सर्वभूतानाम्, सब भूतों के वो मित्र बनना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। तो आइए, इस आनंद भरी दुनिया में आपका स्वागत है। क्यों पीछे पीछे रहते हो? क्या होगा पता नहीं क्या है, क्यों सोचते हो? भगवान को मौका दो, उनको वो आपको अपना बनाएंगे, वो मौका उनको दे दो आप, फिर देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।